प्रातः क्लास चल रहा था, एक 11/1966 दूसरे पेज के अंतिम लाइन में बात चल रही थी। सिर्फ ऐसे नहीं कहना है कि हे पतित पावन आओ, लेकिन साथ में ये भी कहना है कि हे पतितों को पावन बनाने वाले, हमको आकर के नाली सुनाओ, क्योंकि ज्ञान से ही सदगति होती है। अज्ञान से दुर्गति होती है। और इस दुनिया में जो भी देहधारी धर्मगुरु आत्माएं मनुष्य आत्माएं हैं, वो सब जन्म मरण के चक्र में आने के कारण अज्ञानी है। तो हे परमपिता परमात्मा, एक आप ही ऐसी आत्मा हो जो जन्म मरण के चक्र से न्यारी हो, इसलिए त्रिकांदर्शी हो, नाली स्थूल हो। तो हे पतित पावन, आ करके हमको नालिज दो, नाली स्थूल बनाओ। आप में क्या नालिज है वो भी तो आकर के बताओ। पतित आत्मा को पावन आत्मा बना देंगे, नई दुनिया बना देंगे। नई दुनिया में जो भी आत्माएं होंगी, प्रजा वर्ग की होंगी, दास दासी वर्ग की होंगी, अधिकारी वर्ग की होंगी, राजा रानी वर्ग की होंगी, वो सभी तो पति से पावन बनेंगी ना। परंतु राजयोग की गहराइयों को वो ही सीखेंगी जो पूरी क्या होंगी, नॉलेज फुल होंगी। इसलिए हे पतित पावन, आ करके हमको नॉलेज फुल बनाओ। तो ये बात भी आकर के बताओ कि आप में क्या नॉलेज है। वो नॉलेज भी तो साथ में आना चाहिए। एक 11/1966 की वाणी का तीसरा पेज। अच्छा, ये भी कहते हैं पतित पावन, फिर नॉलेज फुल भी कहते हैं, फिर और भी कहते हैं कि हमारा दुख हरो और सुख दियो। तो ये भी उन बेचारे भक्तों को मालूम नहीं है कि सुख कौन सा देंगे है। बाप आवेंगे तो कौन सा सुख देंगे। अरे है, हाँ इंद्रियों का सुख नहीं देंगे। इंद्रियां देह का अंग है, पंचभूतों से देह बनती है। पंचभूत नाशवान है और आत्मा अविनाशी है। हम अविनाशी आत्मा की संतान है, हम कोई पंचभूतों का पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश इनका जो संघात है प्रकृति, हम सिर्फ प्रकृति के रचना नहीं है, हम तो प्रवृत्ति की रचना है। प्रकृति और प्रकृति को कंट्रोल करने वाला बाप प्रकृतिपति की रचना है। तो जैसा बाप वैसे बच्चे होने चाहिए। तो बाप बाप देह से परे है, उसको देह है ही नहीं। उनकी आत्मा का ही नाम शिव है। और हम बच्चे आत्मलोक से जब इस दुनिया में आते हैं तो पंचभूतों की दुनिया में आ जाते हैं, प्रकृति की दुनिया में आ जाते हैं। तो प्रकृति के पंचभूतों के संग के रंग में आते हैं। प्रकृति के पांचों ही तत्व तीन गुणों से प्रसार होते हैं, सत रज और तम। हम मनुष्य आत्माएं भी आत्मलोक से इस दुनिया में आने के बाद पंचभूतों की धारा में बहने लगते हैं। हमारी भी ये स्थिति होती है कि पहले हम सत्व प्रधान थे, फिर रजो प्रधान बने, फिर कलयुग में आकर के तमोह प्रधान बन जाते हैं। फिर बाप आकर के हमको सत्व प्रधान बनाते हैं, सत्व प्रधान दुनिया के लिए सत्व प्रधान बनाते हैं। हम बच्चों का ऐसा रूहानी संगठन तैयार करते हैं जिनके वाइब्रेशन मात्र से ये प्रकृति के पांच तत्व भी सात्विक बन जाते हैं। लेकिन ये उन्हीं बच्चों के द्वारा होता है जो बच्चे नॉलेजफुल बनते हैं, बाप की पूरी पहचान, बाप की रचना की पूरी पहचान और सत्य चक्र की पूरी पहचान। तो जिनको पूरी पूरी पहचान होती है वो राजयोग सीख करके राज परिवार में आ जाते हैं, क्योंकि भगवान ही आकर के आधीन मनुष्यात्माओं को स्वाधीनता का पाठ पढ़ाते हैं। और दुनिया में जितने मनुष्य मात्र हैं, एक्स वाई जेड नंबर वन से लेकर के लास्ट नंबर तक स्वाधीन बनाते हैं या अधीन बनाते हैं? आधीन बनाते हैं। एक वेद का आत्माओं का बाप ही है जो सदैव स्वाधीन रहता है। इस पतित दुनिया में पतित मुकर्रर रथ में आता है तो भी किसी के अधीन नहीं होता। क्योंकि वो सदैव स्वस्थिति में स्थित रहता है, इसलिए स्वाधीन रहता है। और हम मनुष्य आत्माएं भगवान बाप के आने के बावजूद भी क्या सदैव स्वस्थिति में रहती है? आत्मिक स्थिति में रहती है? अपना अपना प्रयास अलग अलग है। अपनी अपनी पुरुषार्थ की गति अलग अलग है। जो गति पूर्व जन्मों से कनेक्टेड है, पूर्व जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों से कनेक्टेड है, भगवान तो पुनर्जन्म में आता ही नहीं। तो जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है वो सुख दुख से भी न्यारा है। हम जन्म मरण के चक्र में आते हैं तो सुख दुख में आते हैं। तो देखो, किसी को मालूम नहीं है तुम बच्चों के सिवाय कि भगवान आप आकर के कौन सा सुख देंगे। इंद्रियों का सुख देंगे या इंद्रियों से अतीत का सुख देंगे? उसे इंद्रियां है ही नहीं, उसको अपनी देह ही नहीं है। तो जिसके पास जो होगा वो ही तो देगा ना। धनवान क्या देगा? धन देगा। जिसको बहुत मकान होंगे वो क्या देगा? मकान देगा। भगवान के पास देह नहीं है, देह का सुख नहीं है, देह की इंद्रियां नहीं है, तो इंद्रियों का सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है। इसलिए वो जब आता है प्रत्यक्ष रूप में इस सृष्टि पर, जिसकी यादगार है महाशिवरात्रि, तो आते ही एक सेकंड में राजा जनक के मिसल सदगति दे देता है। एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति, मुक्ति अर्थात दुख दर्दों से छुटकारा, और जीवन मुक्ति अर्थात जीवन भी रहे और जीवन के रहते रहते भी जीवित होते हुए भी दुख दर्दों से छुटकारा मिल जाए। ऐसे नहीं कोई सचिव आ जाता है, नहीं, एक्यूरेट सतयुग आने से पहले ही जीवन रहते रहते ही दुख दर्दों से छुटकारा उनको मिलता है जो ज्ञानवान बच्चे होते हैं। इसलिए बाप कहते हैं मुझे कौन से बच्चे प्रिय हैं, ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। तो देखो जो और धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, क्योंकि शास्त्रों में भी ब्राह्मणों की नौ कुरियां गाई हुई हैं, तुम तो अव्वल नंबर कुरी के बच्चे हो, बाकी जो नीची कुरियों के ब्राह्मण हैं पूरे 84 जन्म नहीं लेते हैं, कम जन्म लेते हैं, पूरी 16 कला संपूर्ण नहीं बनते, कम कला वाली आत्माएं बनते हैं, उनको फिर ये स्वर्ग का वर्षा नहीं मिलता। कौन सा? कि जीवन भी रहे और जीवन रहते रहते इसी पुरानी नरक की दुनिया के बीच में स्वर्ग का अनुभव करे। और तुमको वो ऊंचते ऊंचे वर्षा प्राप्त होता है जिसमें लगातार चढ़ती कला है, उतरती कला का नाम निशान नहीं रहता। तो जिनको वो ऊंचे ऊंचे सदगति प्राप्त नहीं होती है उनको फिर बाप के घर में शांति दान में स्थान मिल जाता है। लौकिक दुनिया में भी ऐसे देखा जाता है, जो बाप के बच्चे होशियार होते हैं, बाप की बात मानते हैं, बाप की दुकान संभालते हैं, उन बच्चों को बाप घर में रखता है या दुकान कारखाने में भेज देता है, धंधे दोरी में भेज देता है। और जो बच्चे निठल्ले बन जाते हैं, काम ही नहीं करते, बाप की बताई हुई बातों पर ध्यान ही नहीं देते, उनको क्या कर देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, नहीं, क्या करते हैं, उनको घर में बैठा देते हैं। क्योंकि बाहर की दुनिया में जाएंगे तो वहां भी जाकर के ये हड़कंप शांति महल फैलाएंगे, इसलिए घर में बैठा देते हैं। तो ये बेहद का बाप भी क्या करते हैं, जो बाप की नॉलेज नहीं लेते उन बच्चों को शांति धाम में बैठाए देते हैं। बाप का घर है शांति धाम, सुखधाम की रचना तुम्हारे लिए करते हैं। नहीं तो जब सबका बाप एक है, गाते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, तो एक बाप हुआ ना। तो जब सबका एक बाप है तो सबको जीवन मुक्ति का वर्षा मिलना चाहिए ना, है? कोई को मिले और कोई को न मिले, ऐसा क्यों? तो बाप कहते हैं मैं एक जन्म की जीवन मुक्ति का वर्षा तो सभी को देता हूं, ये दादे का वर्षा है, मनुष्य सृष्टि के बाप का वर्षा नहीं है। क्या? कौन सा वर्षा? जीवन में रहते कम से कम एक जन्म के लिए सुख का वर्षा, जिसमें दुख का नाम निशान न हो, ऐसा वर्षा पाने वाले दूसरे धर्म की आत्माएं, दूसरे धर्म के धर्म पिताएं, और उनके सभी फॉलोअर्स उसी लिस्ट में आ जाते हैं। कम से कम एक जन्म के लिए एक जीवन को दुखों से मुक्त कर देते हैं। पीछे तो ड्रामा में है कि वो हाँ इस सृष्टि में आते हैं, पंचभूतों की दुनिया में आते हैं, अपने अपने निर्दिष्ट फलाने फलाने टाइम पर आते हैं, लेकिन तब आते हैं जब सृष्टि द्वैतवादी बन जाती है, देवताएं तो अद्वैत होते हैं, एक धर्म एक राज्य एक भाषा एक कुल एक मत, तो द्वैत हुआ क्या? ये तो अद्वैत हो गए। परंतु जब से सृष्टि रूपी रंगमंच पर ये दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आने लगे, इन्होंने आकर के इस दुनिया में द्वैतवाद फैलाया, द्वैतवाद का मतलब हाँ जी, तुम बच्चे तो एक ही अद्वैत बाप के बच्चे हो, तुम शूटिंग पीरियड में भी दूसरा पिता नहीं बनाते, एक से सुनते हो, एक से ही जन्म लेते हो, ए के अलावा कोई दूसरी तुम्हारी माता भी नहीं होती और पिता भी नहीं होता, लेकिन और धर्म में कन्वर्ट होने वाली जो आत्माएं हैं, खासकर भारतवासी ही कन्वर्ट होते हैं। वो भारतवासी जो भगवान बाप के आने पर संगम युगी दुनिया में द्वैतवाद की शूटिंग कर देते हैं, एक बाप की बातों को न मान करके, एक पर विश्वास न करके, एक पर सदाकाल का निश्चय न पैदा करके औरों की गिरफ्त में आ जाते हैं। औरों को अपना बाप बना लेते हैं। उन्हीं से ज्ञान सुनते हैं। उनसे जो ज्ञान सुनते हैं वो सुनाने वाले देहधारी हैं, जन्म जन्मांतर के, या विदेही हैं? देहधारियों से देह की इंद्रियों का सुख मिलता है। कौन से युग से? द्वैतवादी युग से। अतीन्द्रिय सुख उनको नहीं मिल सकता। इसके अलावा जो भी और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले आठ कुरी के नीचे ब्राह्मण हैं, उनकी संख्या दिनों दिन रात दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है, द्वापर से लेकर के कलयुग अंत तक। तो संसार का वातावरण दैहिक वातावरण बनेगा या आत्मिक स्टेज वाला बनेगा? है, दैहिक बनता है। पंचभूतों का वातावरण बनता जाता है। ये सारी दुनिया के मनुष्य मात्र भौतिकवादी बनते जाते हैं। आत्मवाद को भूल जाते हैं और पंचभूतवादी भौतिकवादी बन जाते हैं। तुम बच्चे मुट्ठी भर रहते हो और वो दुनिया में करोड़ों की तादाद में हो जाते हैं। जो आत्माएं ऊपर से भी उतरती रहती हैं और जो ऊपर से नीचे उतर आए उनमें भी वृद्धि होती रहती है जन्म बाई जन्म, और जो देव आत्माएं थी मुट्ठी भर वो भारत माता में जन्म लेने वाली आत्माएं हैं। मातृदेशी है या पितृदेशी है? भारत माता कहा जाता है, भारत पिता नहीं कहा जाता, क्योंकि आत्माओं का बेहद का बाप जिस तन का आधार लेते हैं पहले पहले वो भी माता हुआ या पिता हुआ?
माता हुआ।
वो भी माता हो गया। फिर उस माता से कनेक्टेड जो भी आत्माएं हैं, उस माता में वास करने वाली जो भी आत्माएं बुद्धियोग से, वो सब कहां की वासी हुई? भारतवासी हुई। नाम ये भा ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, हीरो पार्टदारी है, शुद्ध भारतीय है, जिस भारत में बाप आते हैं वो भारत है, जन्म जन्मांतर है, वाइब्रेशन से, सत्संकल्पों से, वाचा के आधार पर अथवा कर्म इंद्रियों के किए हुए कर्मों के आधार पर भी शुद्ध भारतीय है या विदेशी संस्कार धारण करने वाला है, क्या है?
भारतीय।
वो अकेला ही क्यों है और आत्माएं क्यों नहीं? है
नंबर वार
क्यों
चला जाता है वो?
और आत्माएं नंबर वार क्यों?
पुरुषार्थ है अंदर,
उनका पुरुषार्थ में नंबर क्यों बन गया? वो अल्लाह बल्दीन क्यों बन गया जो अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला धर्म पिता बनता है? ब्रह्मा का बड़ा पुत्र सनत कुमार कहा जाता है, जिसके नाम पर सनातन धर्म नाम पड़ता है। हर धर्म के पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है, क्योंकि इस मनुष्य सृष्टि में जब से नई सृष्टि का सूत्र पात्र हुआ तो अव्वल नंबर कौन सी आत्मा है? जो नई सृष्टि में वाइब्रेशन के आधार पर, सत्संकल्पों के आधार पर पहले प्रवेश करती है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज, जिसे सभी धर्मों में आदम, एडम, हिंदुओं में आदिदेव, जैनियों में आदिनाथ कहा जाता है, वो अव्वल नंबर पुरुषार्थी है, जो सृष्टि के आदि में विष्णु के रूप से परम पद प्राप्त करता है। आदि में सो अंत में भी, जब कलयुग का अंतिम दृश्य आता है और भगवान बाप नई सृष्टि का फाउंडेशन लगाने के लिए परम धाम छोड़ करके इस तामसी सृष्टि पर आता है, तो उस समय भी वो आत्मा विश्वरूप होती है या नहीं होती है? आदि में विश्वरूप, एकदम सृष्टि के आदि में, तो अंत में भी है। नियम क्या है? जो आदि सो अंत, तो अंत में भी जो पति पत्नी होते हैं एक दूसरे में ऐसे ही समा करके रहते हैं जैसे उनकी पहली पहली रचना ब्रह्मा और सरस्वती कैसा जीवन बिताया उन्होंने।
हम सबने कहा
सरस्वती माता ब्रह्मा के एक एक शब्द को फॉलो करती थी या नहीं, नक्शे कदम पर चलने वाली थी या कोई बात में कभी विरोध करती थी?
विरोध नहीं करती थी।
तो देखो नई सृष्टि की शुरुआत जब सतयुग में होती है तब भी षष्ठी रूपी वृक्ष के पहले पत्ते के रूप में वो दोनों आत्माएं सोलह कला संपूर्ण के रूप में अपने मात पिता को ही फॉलो करने वाली होती हैं। सिर्फ अंतर ये होता है कि मात पिता चढ़ती कला का पुरुषार्थ करने वाले थे और उनके बच्चे जो नई सृष्टि में पैदा होते हैं राधा कृष्ण मनुष्य सृष्टि वृक्ष के पहले पत्ते वो चढ़ती कला में रहते हैं या उतरती कला में आ जाते? उतरती कला में आ जाते, लेकिन सोलह कला संपूर्ण ही रहते या कलाएं नीचे चली जाती है? है? हाँ, कलाएं धीरे धीरे चौरासी जन्मों में से जो पहला जन्म है उस पहले जन्म के अंत तक कला चौथाई उनकी गिरेगी या नहीं गिरेगी? हैं? पौने सोलह कला रह जाएगी। उस पौने कला सोलह ऊंचाई से जिन बच्चों का जन्म होगा सेकंड नारायण और नारायणी का वो सोलह कला संपूर्ण होंगे या कम कला वाले होंगे? पौने सोलह कला वाले। तो देखो पीछे पीछे आने वाली जो भी आत्माएं हैं इस सच रूपी रंगमंच पर उनकी आत्माओं की शक्ति क्षीण होती जाती है क्योंकि वो फलाने फलाने परवर्ती टाइम पर आती हैं। अब ये भी तो सबको मालूम है कि भाई क्रिश्चियन धर्म तो जब था उनके आगे क्या था? कहेंगे भाई बौद्ध धर्म था। अच्छा बौद्ध धर्म के आगे क्या था? भाई इस्लाम धर्म था। अच्छा फिर उसके आगे क्या था? तुम लोगों को जब समझाना होता है ना तो ऐसा ही समझाइएगा कि इस झाड़ में ऐसा समझाओ या ऐसे ऐसे समझाओ। सीढ़ी में चौरासी जन्मों की ये जो सीढ़ी है ये जो भी धर्म वाले आते हैं इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन सीढ़ी के आदि में नहीं है ना? है या नहीं है? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट है? नहीं है। तो इसलिए सीढ़ी इस झाड़ के साथ में रखनी है नहीं तो क्या करते हैं आगे पीछे कर देते हैं। समझाने के समय में झाड़ के साथ सीढ़ी रखनी है, क्योंकि यहाँ भी सतयुग ऊपर में दिखाते हैं सीढ़ी में, और यहाँ भी जो गीता में बताया है कि मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ है, समझाने के लिए ये सीधा करके दिखाया है। वास्तव में जो जड़ें हैं वो ऊंची स्टेज वाली हैं, और जो शाखाएं हैं वो नीचे नीचे जाने वाली हैं। तो सतयुग में ऊपर है देवता धर्म की आत्माओं को दिखाया गया है, वहां लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाते हैं। दुनिया में एक ही राज्य, एक ही राजा, एक ही धर्म होता है, एक ही भाषा। तो वहां सीढ़ी में भी दिखाते हैं, उल्टे झाड़ में भी ऐसे ही दिखाते हैं। तो ये तो समझाया जाता है ना अच्छी तरह से कि देखो अभी ये कलयुग है और इस कलयुग के बाद फिर पीछे होगा सतयुग। ये कलयुग में अनेक धर्म होते हैं, अनेक लोग होते हैं, या सतयुग में होते हैं? सतयुग में तो और धर्म ही नहीं होते हैं, तो जनसंख्या भी कम होती है। इसीलिए तो कहा है जो पीछे अनेक धर्म और उनके अनेक फॉलोअर्स हो जाते हैं दुनिया में, उन सब धर्म वालों को त्याग दो, उनका संग नहीं करो। धर्म पिताओं को भी त्याग दो, सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को त्याग दो, या कोई को त्यागो कोई को न त्यागो, सभी को त्याग दो। सभी धर्म तामसी बन गए हैं। जो देवी देवता कहलाते थे वो भी अपन को हिंदू कहने लग पड़े। ये देवी देवता सनातन धर्म भी प्रायः लोप हो गया, इसलिए सबको मारो गोली। मना गोली मारने का क्या अर्थ है? उनकी बातों को नहीं मान लेना है सहज रूप से, वो तो झूठी झूठी बातें सुना देंगे। जैसे क्रिश्चियंस ने, मुसलमानों ने और धर्म वालों ने झूठी झूठी बातें सुना करके भारतवासियों को कन्वर्ट कर लिया, इसलिए उनकी बातों से प्रभावित नहीं होना है। प्रभावित हो जाएंगे तो उनकी प्रजा बनना पड़ेगा। क्या यहां शूटिंग हो जाएगी उनके धर्म में कन्वर्ट होने की, तो तुमको प्रजा बनाकर तुम्हारे ऊपर राज्य करेंगे। इसलिए कभी भी कोई से प्रभावित नहीं होना। एक बाप दूसरा मेरा कोई बाप नहीं, मैं किसी की बात को मानने वाला नहीं, और हठपूर्वक मानने की बात नहीं है। ज्ञान सागर बाप का ज्ञानी आत्मा बनकर के दिखाना है। हर बात का जवाब ज्ञान से देना है। हठ योग से नहीं। तो बताओ कि झाड़ में भी और सीढ़ी में भी पहले पहले सतयुग त्रेता, बाद में होता है कलयुग नीचे स्टेज में। तो जब सत्य प्रधान सृष्टि होती है सत्य युग में, तो थोड़े मनुष्य होंगे या ज्यादा होंगे? सच्चों की संख्या थोड़ी होती है और झूठों की संख्या ज्यादा होती है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है सतयुग में अंत तक 9 लाख होंगे। क्या 9 लाख होंगे जो सत्य पर डटी रहने वाली आत्माएं हैं? औरों के मुकाबले जास्ती। उनकी संख्या 9 लाख। कौन से जन्म की बात है? हैं?
8 जन्म
में 9 लाख है? अरे कितने जन्म में 9 लाख है? पहले जन्म में 9 लाख। ये हैं पक्के सूर्यवंशी, 16 कला संपूर्ण। तो वहां भी लिख देना चाहिए 9 लाख। झाड़ के चित्र में भी लिखो, जो उल्टा झाड़ है उसमें ऊपर क्या लिखो? पहले जन्म में 9 लाख जनसंख्या। तो सतयुग के आदि में लिखना चाहिए 9 लाख, सतयुग के अंत में त्रेता के आगे संख्या बढ़ेगी, त्रेता से 1 जन्म पहले कि 9 लाख रहेगी, संख्या बढ़ जाएगी, बहुत हो जाएंगे ना। तो लिखत में भी करेक्शन चाहिए, अच्छी तरह से करेक्ट करके लिखो। करेक्शन करने के लिए ब्रेन चाहिए, बुद्धि चाहिए। कहां से आवेगी बुद्धि? है? है। देह स्थूल की इंद्रियां ज्यादा है, स्थूल है, देह जाती स्थूल, इंद्रियों में भी ज्ञान इंद्रियां स्थूल या कर्मेंद्रियां स्थूल? कर्मेंद्रियां स्थूल। और इंद्रियों में भी 11वीं इंद्रिय मन दोनों के बीच में, 10 इंद्रियां और 11वां मन ज्यादा स्थूल कौन है? स्थूल है 10 इंद्रिय ज्यादा स्थूल, और ज्यादा सूक्ष्म कौन है? मन बहुत सूक्ष्म, मन से भी जास्ती प्रबल कोई है जो अति सूक्ष्म है, क्योंकि एटम जिससे एटम बम बनता है, जो एटम बम सारी दुनिया को खलास करने के निमित्त बन जाते हैं। इतनी ताकत होती है एटम में। क्यों ताकत होती है? क्योंकि अरे सूक्ष्म होता है, जो जितना जास्ती सूक्ष्म उतना जास्ती ताकतवर बन जाता है। तो देखो, इंद्रियों से मन सूक्ष्म है और मन से बुद्धि सूक्ष्म है, जिसे त्रिनेत्री कहा जाता है। भारतीय परंपरा में, शास्त्रों में त्रिनेत्री किसको कहा जाता है? हैं? अरे कोई तीन नेत्र वाला है? कोई नहीं
है। शंकर,
शंकर को दिखाते हैं। और उस त्रिनेत्री से भी जाती कोई सूक्ष्म है? है शिव बाप, जिसको अपनी देह नहीं है, अपनी इंद्रियां ही नहीं है, जिसको अपना मन ही नहीं है। इसलिए गीता में आया, इंद्रियां परान्या हो, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं कंट्रोल करना। कि सहज है कंट्रोल करना इंद्रियों को, है बड़ी प्रबल हैं। इंद्रियों से मन प्रबल है। इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु पराबुद्धि, मन से भी प्रबल त्रिनेत्री बुद्धि। यो बुद्ध्या परसस्तु सह, जो सत्नेत्री बुद्धिमान से भी परे है वो कौन है? सह, वो परमपिता परमात्मा ही बुद्धि से भी परे है, त्रिनेत्री से भी परे है। क्यों परे है? क्योंकि वो मन से भी ज्यादा सूक्ष्म है और मन को कंट्रोल करने वाली जो बुद्धि है उस बुद्धि से भी जास्ती कंट्रोल है उस परमपिता परमात्मा का। तो हम आत्माएं भी क्या करें, किसको याद करें? देह को याद करें, देह की प्रबल इंद्रियों को याद करें, इंद्रियों में प्रबल मन को याद करें, मन से भी प्रबल त्रिनेत्री शंकर को याद करें। यह त्रिनेत्री शंकर से भी जो प्रबल है सर्वोपरि, जिसको अपनी देह नहीं है, इंद्रियां ही नहीं है, मन ही नहीं है, उसको कहने के लिए इस संसार में सिर्फ एक ही है जो सदा उसका साथी है। जब इस सृष्टि पर आता है तो और कोई साथ दे या न दे, लेकिन वो एक उसका साथ जरूर देता है। कौन है? त्रिनेत्री। अब सवाल ये है, त्रिनेत्री शंकर को तो शरीर दिखाते हैं, तीसरा नेत्र भी दिखाते हैं, नाक आंख कान सब कुछ पूरा देह दिखाते हैं। तो वो इतना सूक्ष्म कैसे बन जाता है पावरफुल? क्योंकि वो उसी निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर जो सदैव निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है उसकी याद में तल्लीन बैठा दिखाया जाता है। चित्र बने हुए हैं, चित्र काहे की यादगार होते हैं, चरित्र की यादगार होते हैं। तो देखो हम बच्चों को भी क्या करना चाहिए, निरंतर उस साकार में आए हुए निराकार की याद में रहें, क्योंकि सिर्फ निराकार को याद करना बहुत कठिन है। वो सिर्फ धर्म पिताएं ही हैं जिनको दुनिया की बड़े से बड़ी आबादी झुक जाती है। क्योंकि वो सिर्फ निराकार की याद में रहते हैं। कितना भी कठिन रास्ता है जो गीता में बोला है, अव्यक्तात् गतिर्दुःखम् देह बद्धिर्यवाप्यते, जो अव्यक्त गति है, अव्यक्त स्टेज है, वो देहधारियों के द्वारा बड़े दुख पूर्वक प्राप्त होती है। और बड़े बड़े दुख है वो धर्म स्थापन करने वाले धर्म पिताएं ही उठाती हैं। धर्म की धक्का खाने की सबसे बड़ी हिम्मत कौन करते हैं, धर्म पिताएं या उनके फॉलोअर्स है? धर्म पिताएं करते हैं। लेकिन वो धर्म पिताएं भी अपन को भगवान मानते हैं क्या? है? वो भी गॉडफादर कोई और को कहते हैं, अल्लाह मियां कोई और को कहते हैं, परंतु वो जानते नहीं है कि जो अल्लाह ऊंचे ते ऊंचे है वो इस संसार में आकर के ऊंचे ते ऊंचे कार्य करके जाता है। क्या ऊंचे ते ऊंचे कार्य करता है जो और कोई मनुष्य मात्र, कोई धर्म पिता, कोई धर्मात्मा नहीं कर पाता है? है? नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाने का काम कोई भी धर्म पिता नहीं करता। ये एक ही परम पिता परमात्मा है, जब आता है तो नरक को स्वर्ग बनाता है। नरक क्यों कहा जाता है? क्योंकि नर ही करने वाला है वो दुनिया को बनाने वाला। नरक की दुनिया को बनाने वाला कौन? नर, मनुष्य। और वो नर है ही नहीं, वो मनुष्य है ही नहीं, मननात् मनुष्य कहा जाता है। जो मन का उपयोग करता है वो मनुष्य होता है। जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े कोई मन का उपयोग थोड़े ही करते हैं, संकल्प विकल्प करते हैं क्या? नहीं करते। तो मनुष्य कहा जाता है मन का उपयोग करने के कारण। और भगवान, भगवान मन का उपयोग नहीं करता क्योंकि उसको मन है ही नहीं। वो तो असोचता है, क्यों? क्योंकि उसको सोच विचार करने की दरकार ही नहीं। क्यों दरकार नहीं? नहीं, दरकार इसलिए नहीं है कि वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा होने के कारण तीनों कालों को जानता है, तो उसको कुछ भी सोच विचार करने की दरकार है ही नहीं। तो जो मन से भी परे है और मन को कंट्रोल करने वाला शिव है कि कोई दूसरा है? है मन को, जिसको मन है ही नहीं उसको मन को कंट्रोल करने की दरकार है? नहीं, उसको मन ही नहीं है तो क्यों कंट्रोल करेगा? फिर कौन है?
बुद्धि
है।
बुद्धि है।
हाँ, त्रिनेत्री। तीसरा बुद्धि का नेत्र जो कहा जाता है वो ही एकमात्र शंकर है, जो मनरूपी बैल कहो मनरूपी घोड़ा कहो उसके ऊपर सवार दिखाया जाता है। शंकर की सवारी क्या दिखाते हैं? बैल दिखाते हैं। तो ये जो बैल है वो कौन सी आत्मा है? उसको मन कहो उसको दिल कहो, वो दिल का दिल वाला कौन है? दिला कृष्ण नहीं कहते, दिला शिव नहीं कहते, दिला ब्रह्मा नहीं कहते, विष्णु नहीं कहते, क्या कहते हैं?
दिलाराम।
जरूर राम वाली आत्मा है, जो दिल कहो मन कहो उसको कंट्रोल करके रखता है। और जब मन कंट्रोल हो जाता है तो दसों इंद्रियां आराम से कंट्रोल हो जाती है। अभी क्या कहें? हैं? सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण का राज्य है वहां लक्ष्मी नारायण मन के कंट्रोलर हैं या कंट्रोल्ड होने वाले हैं, रचयिता हैं या रचना है? रचना किसके कंट्रोल में होनी चाहिए? रचयिता के कंट्रोल में होनी चाहिए। तो संगम युग में जो लक्ष्मी नारायण है वो रचयिता है, मन को कंट्रोल करने वाले हैं, कंट्रोलर हैं, इसलिए उनको ऊपर दिखाया है। और जो कंट्रोल्ड होने वाले बच्चे हैं उनको नीचे दिखाइए। वो है नर से नारायण बनने वाले और वो नर से डायरेक्ट उसी जन्म में नारायण नहीं बनते, उनके बच्चे अगले जन्म में नर से प्रिंस बनते हैं और प्रिंस बड़ा होता है तो अपने बाप से राज्य प्राप्त करता है, तब नारायण बनता है। तो वो भी झाड़ में भी दिखाना चाहिए आदि में, उल्टे झाड़ में, और सीढ़ी में भी दिखाते हैं। तो ये अच्छी तरह से समझाया जाता है कि देखो कि सत्युग में थोड़े मनुष्य होंगे, बाद में संख्या दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती। ये बुद्धि से विचार करने की बातें हैं। बुद्धि विस्तार में जाने वाली भी हो और बुद्धि सार में भी जाने वाली हो। जब सार में जाएगी तो क्या रूप होगा? है ज्योति बिंदु। और विस्तार होगा तो 84 जन्मों का भी ज्ञान आ जाएगा। तो देखो बुद्धि का भी तो बाप देते हैं ना। है बुद्धि का वरदान कौन देते हैं? बाप देते हैं। किस आधार पर देते हैं?
ज्ञान के आधार।
हाँ जी, ज्ञान माने जानकारी, पहचान। जो जितना गहराई से बाप को पहचाने, कौन से बाप को पहचाने? आत्माओं के बाप ज्योति बिंदु को पहचाने। वो छोटे बच्चों की नॉलेज है या बड़े सगीर बच्चों की नॉलेज है? ये छोटे बच्चों की नॉलेज है जो ब्रह्मा बाप के द्वारा दी गई, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के द्वारा चंद्रवंशियों को दी गई। बाप आकर के ऊंची नॉलेज देते हैं। जिस बाप को सुप्रीम टीचर कहा जाता है वो एक ही बाप है। जो बीज बोने वाला बाप भी है। पालना देने वाली माता भी है। और पढ़ाई पढ़ाने वाला ऊंचे स्तर की सुप्रीम टीचर भी है। और मन बुद्धि को सदगति देने वाला सदगुरु भी है। साथ साथ मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला बाप भी है अंत में।